हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं भागवतम के चौथे चतुर्थ स्कंध 26वां अध्याय 25वां श्लोक। तो मेरे पीछे दोहराइएगा, वक्त्रम नते वितिलकम मलिनम मलिनम विहर्षम। वक्त्रम नते वितिलकम मलिनम विहर्षम। संरम्भ भीमम विमृष्टमपेतरागम। संरम्भ भीमम विमृष्टमपेतरागम। पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सृजातौ। बिम्बाधरं विगत कुंकुम पंकरागम। वक्त्रं नते वितिलकं मलिनं विहर्षम्। संरम्भ भीमम विमृष्टमपेतरागम्। पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सृजातौ। बिम्बाधरं विगत कुंकुम पंकरागम्। बोलिए, वक्त्रं नते वितिलकं मलिनं विहर्षम्। माताएं, नते वितिलकं मलिनं विहर्षम्। संरम्भ भीमम विमृष्टमपेतरागम्। पश्येस्तनावपि शुचोपहतौ सृजातौ। बिम्बाधरं विगत कुंकुम पंकरागम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, वक्त्रम मुख, न कभी नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए, समझ में नहीं आ रहा आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। काफी दूर बैठे हैं आप लोग, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आगे बढ़ूं या नहीं पता नहीं। ते तुम्हारा, वितिलकम निर्लंकृत, मलिनम मलिन, विहर्षम खिन्न, संरम्भ क्रोध से, भीमम भयानक, अविमृष्टम कांतिहीन, अपेतरागम स्नेह शून्य, पश्य मैंने देखा है, स्तनई स्तनऊ तुम्हारे स्तन, अपि भी शुचा अपहौतौ तुम्हारे आंसुओं से सिक्त, सुजातौ इतने सुंदर, बिम्बाधरम बिम्बा के समान लाल होंठ, विगत रहित कुंकुम पंक, केशर के रागम रंग। तो मैं अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए कहूंगा, अनुवाद पे ध्यान दीजिएगा और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी अचानक से, वैसे हर तात्पर्य में मोड़ लेते हैं लेकिन इसमें पैराग्राफ चेंज किए बिना एक जगह पे एकदम से मोड़ ले लेते हैं। ऐसा लगेगा शुरुआत में एकदम क्या बोलते हैं उसको, इरोटिक चल रहे हैं, मतलब है ही सेक्शन ही ऐसा खतरनाक है, ठीक है। और फिर बाद में जाके, इसका हिंदी मेरे को मालूम नहीं, तो बाद में जाके प्रभुपाद जी एकदम उसका कृष्ण कॉन्शियस या कृष्ण भावनामृत रूप देते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। इसको आचार्य बोलते हैं, सिर्फ आचार्य ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो कोई और बंदा होगा तो इसमें देखेगा ये बहुत अच्छी कविता है। इतनी अच्छी कविता रोमांस में किसी कवि ने नहीं लिखी होगी जितना यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी ने लिखा है। इतना अच्छा लड़की लड़के के बीच में जो होता है, बड़े बड़े गीत गाए गए हैं, हम लोगों ने याद भी किए होंगे, कई लोगों ने लिख लिख के भी कई लोग याद करते हैं, लेकिन ऐसा गीत किसी लड़के ने किसी लड़की के लिए नहीं गाया होगा जो गीत गाया है। लेकिन प्रभुपाद जी उसमें से जो निकाल रहे हैं, एकदम मालूम पड़ता है प्रभुपाद जी नारद मुनि के भाव को समझते हैं। नारद मुनि ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण किस लिए बता रहे हैं कि हम सबके मस्तिष्क में से, चेतना में से जो माया का भूत है वो बिल्कुल उड़ जाए, इसलिए एकदम छू करके उड़ा देना चाहते हैं। इसलिए तो उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस तात्पर्य का और दूसरा सेंटेंस नहीं, पहला दूसरा दो सेंटेंस एक जैसे जाते हैं, तीसरे सेंटेंस में एकदम मोड़ ले लेते हैं प्रभुपाद। छोटा सा तात्पर्य लेकिन बहुत ही जबरदस्त। तो अनुवाद पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, नहीं मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा है, नहीं मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्र अश्रुओं से सख्त देखा है, नहीं मैंने तुम्हारे बिंबा फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा है। अब तात्पर्य पढ़ रहा हूं। प्रत्येक स्त्री तिलक तथा सिंदूर लगाने पर अत्यंत सुंदर लगती है। अब जब स्त्री के होंठ लाल केशर या सिंदूर से रंजित रहते हैं तो स्त्री अत्यधिक आकर्षक लगती है। अब यहां पे प्रभुपाद मोड़ ले रहे हैं। किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो ये खिन्न तथा कांतिहीन लगते हैं, जिससे मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी कोई लाभ नहीं उठा पाता। मैं इस सेंटेंस को लास्ट को वापस से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। किंतु जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि कृष्ण की विमल चेतना से रहित होती है तो ये खिन्न तथा कांतिहीन लगते हैं, जिससे मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी कोई लाभ नहीं उठा पाता। आशा करता हूं आपने ध्यान से सुना होगा। इस पे असल में प्रभुपाद के एक एक जो वाक्य है उस पे वो श्लोकों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक भक्त मेरे से पूछ रहे थे कि प्रभु जी श्लोक याद करने, मेरे को श्लोक याद करने, भागवतम के श्लोक याद करने, कैसे करूं। तो मैंने उनको यही कहा कि भागवतम के, और ये मैंने ही कह रहा, प्रभुपाद के कई शिष्य खासतौर पर 1977 की आखिरी की आप अगर वार्तालाप प्रभुपाद की और प्रभुपाद के शिष्यों की सुनेंगे तो शिष्य प्रभुपाद को बोलते हैं प्रभुपाद जी आपके तात्पर्य श्लोकों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर श्लोक तात्पर्यों को हमने याद किया, तात्पर्यों के सेंटेंसेस को, और उसको हमने किसी के सामने रिपीट किया तो वो लोगों को कहीं ज्यादा कृष्ण भक्ति में स्फुरित करेंगे बजाय इसके कि श्लोक। हम श्लोक बोलेंगे लोग सोचेंगे पंडित, लेकिन तात्पर्य में ऐसा भाव है प्रभुपाद का कि लोग उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता कि अब मनुष्य शरीर मिला मुझे कृष्ण को प्राप्त करना ही है। ऐसे वाक्य प्रभुपाद लिखते हैं जो श्लोकों में ही ऐसे वाक्य नहीं ही लगते पर तात्पर्य में बहुत ही, जैसे आखिरी में यहां पे बोल रहे हैं जो प्रभुपाद, हर आखिरी के पिछले तीन चार श्लोकों के तात्पर्यों को अगर आपने सुना होगा तो प्रभुपाद ने शुरुआत में तो श्लोक के बारे में बोला कि स्त्री कितनी सुंदर दिखती है, इससे कैसे सुंदर दिखती है, कि स्त्री और पुरुष के बीच में कैसी माया है वगैरह बताया, और नेक्स्ट सेंटेंस में जाके प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि यहां पे जो पुरंजनी है वो हमारी बुद्धि को बुद्धि को क्या करती है रिप्रेजेंट करती है बुद्धि को क्या करती है रिप्रेजेंट हाँ प्रतिनिधित्व करती है तो पुरंजनी हमारी बुद्धि बताती है और हम पुरंजन हैं तो ये जो बुद्धि है ये किस तरीके से अगर मलिन होती है ये सेंटेंस में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर बुद्धि मलिन होती है तो कितना भी सुंदर कोई व्यक्ति हो धीरे धीरे मुरझा जाता है जैसे एक गुलाब का फूल अगर भगवान की सेवा में लगे सबको पता होगा वैकुंठ धाम में जो फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं भगवान को वो कभी मुरझाते नहीं असल में यहां पे भी मुरझाते नहीं क्योंकि लेकिन हमारी आंखों के सामने वो मुरझा जाते हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट है तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं हम बोलते हैं ये भी वैकुंठ है और वैकुंठ धाम में भगवान जितने भी वनमाला पहनते हैं फूल वगैरह पहनते हैं वो कभी मुरझाते नहीं तो ये भी प्रभुपाद जी ने वैकुंठ धाम बनाया हमारे लिए यहां क्यों मुरझाते हैं असल में यहां भी नहीं मुरझाते लेकिन मुरझाता क्या है हमारी आंखें मुरझा जाती हैं जो यहां पे बोला है हमारी बुद्धि भगवान से भिन्न देखती है जैसे ही भगवान से भिन्न हम किसी चीज को देखते हैं हम मुरझा जाते हैं और हम जैसे होते हैं आत्मवन मन्यते जगत हम मुरझाए तो सब कुछ मुरझाया हुआ दिखता है जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में बोलते हैं कि भगवान को माया जो है एक बादल के समान है भगवान की दिव्य कांति पूरे आध्यात्मिक जगत में फैली हुई है और वो आध्यात्मिक जगत के एक कोने में थोड़े से में बादल छा गया छोटे छोटे से में बादल छा गया और वो बादल के कारण अभी उतने में जितने जीव हैं वो भगवान को नहीं देख पा रहे और उसके लिए उदाहरण यहां पे क्या कि सूरज जैसे सूरज उगे हुए हैं तो हमारे सामने बादल छा जाता है बादल इतना कुछ बड़ा होता है कुछ एक दो किलोमीटर बड़ा होता है तो एक दो किलोमीटर बड़ा बादल क्या सूरज को ढक सकता है मैं पूछ रहा हूं आपसे ढक सकता है नहीं ढक सकता हाँ ना कुछ बोलिएगा नहीं तो पता नहीं आप सो गए या कहीं और हैं पता नहीं तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखिएगा मैं बीच बीच में क्षमा कीजिएगा मैं छोटा ही बालक हूं लेकिन क्या बोलते वक्त ऐसा कुछ चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है कुछ बोल रहा हूं तो जा रहा है ठीक है नहीं तो रिबाउंड होके वापस अपने कानों में आ रहा है या नहीं पता तो बादल एक दो किलोमीटर का बादल सूरज को नहीं ढक सकता किसको ढकता है वो हमारी आंखों को ढकता है तो माया भगवान को नहीं माया भगवान की शक्ति है माया भगवान को कैसे ढक सकती है लेकिन माया ने हमको आच्छादित किया हुआ है तो वैसे जब हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं कुछ माला अर्पित करते हैं तो वो मुरझाते नहीं भगवान के गले में अगर दिव्य चक्षु हैं तो मालूम पड़ेगा वो मुरझाते नहीं लेकिन हमारी माया के चक्षु हैं ये मुरझा जाते हैं इसलिए हमको सब मुरझाया हुआ दिखता है यहां तक कि भगवान भी मुरझाए हुए दिखते हैं एक भक्त मेरे से बात कर रहे थे तो मैं उनको बोला कि भगवान को देखना चाहिए तो वो बोले देखता तो हूं काफी सीनियर डिवोटी है तो वो बोले देखता तो हूं लेकिन बोर हो जाता हूं वही भगवान वही सामने वही कृष्ण बलराम वैसे ही खड़े हैं इतने साल से वैसे ही खड़े हैं पिछले 40-50 साल से तो हम देख रहे हैं वैसे ही खड़े हैं और पता नहीं कितने पीढ़ी तर पीढ़ियों ने देखे वैसे ही खड़े हैं कुछ करते तो है नहीं तो बोर हो जाता हूं उससे अच्छा माया के रंग बहुत दिखते हैं वहां बोर नहीं होता तो मैं उनको यही कह रहा था बेसिकली हम चर्चा कर रहे थे कह नहीं रहा था चर्चा कर रहे थे कि असल में भगवान ने विराट रूप जब अर्जुन को दिखाया तो वो विराट रूप में पूरा का पूरा जगत दिखाया मतलब हम जितने भी टीवी चैनल्स देखते हैं ना अभी 500-600 टीवी चैनल हैं उसमें कितनी वैरायटी देखते हैं लोग वैरायटी के लिए एक चैनल के बाद दूसरा चैनल दूसरे के बाद तीसरा चैनल करते रहते हैं और बोर नहीं होते वो सारे टीवी चैनल कि वैरायटी जितनी वैरायटी है भगवान के कहीं वो विराट रूप के कहीं चरण कमलों में छोटे से जगह पे कोने में फिट हो जाएगी वो वैरायटी उसके बाद बहुत कुछ बचता है जो हमको पता भी नहीं ब्रह्मलोक में क्या होता है ध्रुव लोक में क्या होता है हमको पता भी नहीं उसका कोई अनुभव नहीं है तो टीवी सीरियल कैसे बना सकते हैं वो सब भगवान के विराट रूप में और ये जो भगवान का विराट रूप है वो भगवान श्याम सुंदर या गोविंद के रूप का एक छोटा सा अंश भी नहीं है वो विराट रूप भगवान के वैकुंठ धाम में नहीं रहता वो माया को कंट्रोल करने के लिए वो वैकुंठ धाम में है ही नहीं उसका अस्तित्व इतना छोटा सा नगण्य रूप है वो विराट रूप और उसके एक छोटे से कोने के टीवी में हम फंस जाते हैं, मनोरंजित हो जाते हैं, बोर नहीं होते हैं। घंटों घंटों लोग फेसबुक पे लगे रहते, और क्या चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। और कितना भक्त को एकदम बैक पेन है, मैंने देखा भक्तों को बैक पेन, एक बाल्टी भी नहीं उठा सकते, लेकिन फेसबुक पे बिठा दो और इंटरनेट की विंडो खुदा दो, 10-15-20 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं, एकदम गोस्वामी बन गए। ना भूख ना प्यास कुछ नहीं। और छोटे छोटे बच्चे गोस्वामी बन जाते हैं, इतने छोटे, ज्यादा छोटे बच्चों को और भी वो माया लगती है, बड़े हो जाते हैं तो थोड़े संभल जाते हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी यहां पे बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए सोचने वाली बात है कि भगवान के साथ में अगर हमको संपर्क बनाना है तो ये जो नारद मुनि स्टोरी हमको सुना रहे हैं, इसको स्टोरी ना समझें, अपितु गंभीरता से अपने जीवन में उतारें कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मेरी प्रगति हो रही है या नहीं, या गाड़ी वहीं पे अटकी हुई है। अगर गाड़ी वहीं पे अटकी होगी तो थोड़े समय में हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसके लिए अगर गाड़ी वहीं अटकी हुई है और हमको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं यानी ये डाउट आ रहा है, तो हमको चेक करना है कि मैं जो क्रियाएं दी हैं भगवान ने या आचार्यों ने, वो क्रियाओं को मैं बराबर जीवन में उतार रहा हूं, यानी मेरी चूक से ही वो क्रियाओं का फल नहीं आ रहा। एक बार एक भक्त ने जयद्वैत महाराज से एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न बड़ा सुंदर था, पूछा, महाराज जी कई साल हो गए मैं देख रहा हूं कई भक्त भक्ति में जुड़ते हैं, और पुराने समय से, प्रभुपाद के समय से मैं देख रहा हूं, और उससे भी पहले बाकी भी संप्रदायों में देख रहा हूं कि भक्त लोग जुड़ते हैं 10-15-20-25-30 साल तक प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो उनका पतन हो जाता है। क्यों पतन हो जाता है? तो जयद्वैत महाराज फेमस है वन लाइनर आंसर करने में, एक लाइन में आंसर कर दिया। तो जयद्वैत महाराज ने क्लास दी थी कि ये प्रोसेस साइंटिफिक है, जैसे प्रभुपाद बोले ये वैज्ञानिक प्रोसेस है, तो वैज्ञानिक प्रोसेस होने के बावजूद भक्तों का पतन क्यों होता है, ऐसे भक्त पूछे। तो जयद्वैत महाराज ने बोला, क्योंकि भक्तों का पतन होता है इसलिए ये प्रोसेस साइंटिफिक है। अब वो समझा नहीं, तो उन्होंने पूछा कैसे, थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। तो आपने कोई भी रसायन शास्त्र देखा है, उन्होंने बताया इसमें रसायन में एक रसायन को दूसरे रसायन में मिलाओ और तीसरा रसायन मिलता है, लेकिन अभी एक रसायन को दूसरे रसायन में मिलाने का तरीका होता है, ऐसे नहीं मिला सकते, उसको तरीका लिखा होता है किताबों में कि उसको किस तरीके से लोहे के जार में मिलाओ या कांच के जार में मिलाओ, फिर इतने घंटे तक रखो, इसको फर्मेंट करो, ये वो वगैरह वगैरह। कई बार वो रसायन का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको 1-2 दिन भी लग जाते हैं, और उसके बाद में अगर आपने सब कुछ ठीक ठीक किया है तो रिजल्ट मिलेगा, अगर ठीक ठीक नहीं किया तो रसायन सी मिलेगा ही नहीं। वैसा ही प्रोसेस है, पहले पहले तो उत्साह से किया, फिर उत्साह, फिर निश्चय ढीला पड़ने लगा, फिर धैर्यात भी ढीला पड़ने लगा, फिर थोड़े से लैक्स हो गए, फिर धीरे धीरे ये छोड़ दिया, फिर वो छोड़ दिया, दिखाने के लिए सब कुछ बाह्य रूप से सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है एकदम, लेकिन अंदर खोखले, अंदर दीमक लगता चला गया। ऐसा दीमक लगा कि वो जितनी बिल्डिंग बनाई थी वो बिल्डिंग दहके खत्म हो गई। और इससे सावधान रहने के लिए ये सारे प्रसंग हमको भागवत में बताए जाते हैं कि भक्त सावधान। और क्या सावधान? वो सावधान है कि ये मनुष्य जीवन, अब मैं टॉपिक के पहले पार्ट में आ रहा हूं, जो पहले में प्रभुपाद जी माया के प्रलोभन को बता रहे हैं, हमको ज्यादातर भागवतम ऐसा दिया कि आदमी के लिए औरत माया है, लेकिन प्रभुपाद इसको और ब्रॉड करते हैं, औरत के लिए आदमी है, आदमी के लिए औरत माया है, दोनों के लिए दोनों माया है। जब तक कृष्ण संबंध नहीं है तो हमारे बीच में जो भी संबंध है वो माया है, हर कुछ माया है, खुद भी माया बन सकते हैं, और डिटेल में मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, लेकिन खुद भी माया कैसे बन सकते हैं उसमें डिटेल में थोड़ी देर में जाऊंगा। पर इससे पहले कि यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसकी सार्थकता एक ही चीज में है, इसको जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और भागवतम के दूसरे स्कंद में बोलते हैं कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। कि ये जो मनुष्य, और उसमें तात्पर्य प्रभुपाद का बहुत ही सुंदर है, आप कभी पढ़िएगा, मैं जितना भी हो सकता है उतना कवर करूंगा उस तात्पर्य को। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति की ये जो मनुष्य जीवन में काम वासना को पूरी करना, कोई भी काम वासना, खास तौर पे स्त्री पुरुष की जो काम वासना है उसमें ना, उसका नाम लिया है, लेकिन कोई भी काम वासना, किसी भी इंद्रिय को तृप्त करने की जो वासना है उसको काम वासना बोलते हैं। अपनी संतुष्टि के लिए कुछ कार्य करना वो काम वासना है। तो ये जो मनुष्य जीवन है इसमें इंद्रियों को संतुष्ट करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। भागवतम में 3 बार नहीं, 1000 बार ये बोला है। तो क्या लक्ष्य है? अप्रोपा तात्पर्य में लिखते हैं कि आज की भौतिक संस्कृति, जो आज संस्कृति हमने बना दी है, हमारी सरकारों ने बना दी है दुर्भाग्यवश, उसमें हमको जीवन का एक ही लक्ष्य बताया जाता है। कुछ भी करो, डाका मारो, चोरी करो, किसी को धोखा दो, कुछ भी करो, पर इंद्र तृप्ति करके लो, कैसे भी करके इंद्र तृप्ति जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए क्या लगता है वो करो, शास्त्रों को भूल जाओ, शास्त्रों में क्या रखा है, और कुछ और मत सोचो। और ये हमको बचपन से, प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, बचपन से हमको ऐसे घोड़े को होता है ना, घोड़े को साइड में देखने नहीं दिया जाता, सीधा देख, साइड में देख लेगा तो कुछ और देख लेगा, फिर इधर उधर भागेगा, वैसे सीधा देख। बचपन से जैसे ही बच्चों ने पूछा, मैं बचपन में पूछा था एक बार पिताजी से, पापा पापा ये बताओ, हिम्मत हुई, काफी मुश्किल होता था पापा से कुछ पूछना, लेकिन एक दिन हिम्मत हो गई और दिवाली मनती थी, हर दिवाली को लक्ष्मी पूजन होता था, मेरे भेजे में नहीं जा रहा था, मैंने पूछ बैठा, अभी गलती हो गई पूछ के, लेकिन पूछ बैठा। अब छोटा था तो माफ कर दिया, बड़ा होता तो मार पड़ती, लेकिन मैंने पूछा, पिताजी ये लक्ष्मी पूजन क्यों होता है दिवाली पे, आपने तो बताया कि राम विजय हुई थी तो लक्ष्मी गौण गणेश की पूजा क्यों होती है। बाद में इस्कॉन में आके थोड़ा जब समझा, प्रभुपाद के तात्पर्य सुने, तो ये सब बनियों ने चालू किए। तो ठीक है, ऐसा पूछते ही एक झापड़ लग गया, ए बकवास मत कर, करने दे हमको, तू जाके पढ़। और पढ़ना क्यों है, स्कूल में जाके क्या बोलते हैं, पढ़ो इसलिए कि पैसा कमाओगे, और पैसा किस लिए, सीधी बात है, पैसा करके करेंगे क्या, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे और ऐश करेंगे और क्या। तो ये पूरा धारणा एक एक टक हमारा फोकस बना दिया है कि कुछ भी कर, मजा कर, मजा कर, मजा कर। और ऐसे ही कर करके भक्त लोग मजा कर रहे थे, और प्रभुपाद से जब मिले, प्रभुपाद ने पहली बार बोला उनको, ऐसा एक भक्त बोले प्रभुपाद को एक कॉन्वर्सेशन में कि प्रभुपाद हम लोगों को कई लोग बोले कि ये सिगरेट मत पियो, डॉक्टरों ने बोला सिगरेट फेफड़े को जला देगी, हम बोले क्या फर्क पड़ता है, फेफड़ा तो जलने वाला है, एनीवेज जलने वाला है, सही बात है, वैसे फूक के नहीं जलेगा तो वैसे जल जाएगा, कभी ना कभी जल ही जाएगा, तो ऐसे फूक के जला ले, दारू मत पियो, ये वो, किसी ने हमको बताया नहीं क्यों, और वो सब कारण हमको जचे नहीं। आपने पहली बार हमको कारण बताया कि ये आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए घातक है, और वो लाइट हमको चमकी कि आध्यात्मिक जीवन इससे मेरा खत्म हो जाएगा। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है, ज्यादातर हमारे जीवन में माया ऐसे आती है कि आध्यात्मिक चोले में भौतिक जीवन, समझ रहे इसको, आध्यात्मिक चोला डाला हुआ है, धोती कुर्ता वगैरह वगैरह, तिलक और कंठे माला कली चेला। भक्तिविनोद ठाकुर गानों के बाद गाने लिखते हैं, इसमें बाउल गीत उसको बोलते हैं, जिसमें सब कुछ है, सब ड्रामा चल रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं, लक्ष्य कुछ और ही है, नाम प्रतिष्ठा शुक्रे रविष्ठा वगैरह वगैरह वगैरह, मैं बड़ा गुरु बन जाऊंगा एक दिन, ऐसा प्रवचन दूंगा कि बड़ा प्रचारक सब सल्यूट मारेंगे, क्या प्रचारक है, वाह क्या क्लास देता है, वाह। उसके लिए ट्रेनिंग दूंगा, ये करूंगा, मशक्कत करूंगा, लेकिन हम देखेंगे किसी भी आचार्य ने हमको ये मैसेज दिया ही नहीं, ना आचार्य ने ये किया, आचार्य ने कि ट्रेनिंग ले लेके भागवतम क्लास नहीं दी, आचार्यों ने ट्रेनिंग ले लेके लोगों को नहीं बुलाया, ना आचार्यों ने इन्विटेशन दिया आओ इधर। ये सही बात है, अगर समझ में आए, अगर सुधरना हो सुधरो, नहीं सुधरना चले जाओ, ये हमारे आचार्य सिखाते हैं। इसीलिए मैं अब थोड़ा सा कुछ कठिन बोलने जाऊंगा तो आप माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आचार्यों को इस व्यासासन पर बैठ के शिला प्रभुपाद की तरफ क्या बोलते हैं, प्रामाणिक होना, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर बस तेल लगाने के लिए कि हाँ लोग आते रहें क्लास में कुछ बोला जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, इसमें खास तौर पे स्त्री पुरुष के संबंध में बहुत ही सावधान होना बहुत जरूरी है, और खासतौर पर हम वृंदावन में रहते हैं, यहां पर बहुत सावधानी बरतना अति आवश्यक है दोनों के लिए। कई बार भक्त लोग सोचते हैं क्या है इसमें, इतना क्यों नियम कानून। आजकल कपड़े भी ऐसे बेढंग के कपड़े पहनने लगे हैं लोग कि पहले मैं फैशन परेड देखता था, तो कैटवॉक होता है, तो उसमें जितने कम कपड़े होंगे ड्रेस में उतना महंगा ड्रेस है। अरे कपड़े ही नहीं है ड्रेस कहने के लिए। तो कपड़े जो हैं वो तन को ढकने के लिए हैं, और वो किस लिए, उद्देश्य क्या है उसका, शास्त्रों में क्यों बोला है कपड़े तन को ढकने के लिए। मंदिर में माताएं आती हैं, माताएं बोलने का दिल ही नहीं करता, ऐसे आते हैं इतने हैं, और कोई शारीरिक चेतना ही नहीं है, ऐसे ठोक के चले जाते हैं ढुम। ऐसा लगता है ये शारीरिक चेतना से पूरे ऊपर है, लेकिन नहीं, शारीरिक चेतना इतनी गंदी तरीके से अंदर भरी हुई है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कुत्ता अगर कीचड़ में पड़ा हुआ है, सुअर कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसको कीचड़ ही अच्छा लगता है, बाहर निकलने को बोला तो बोलेगा अरे बाप रे कितना गंदा है। तो वैसा ये है कि बहुत जरूरी है कठोर बोलना। प्रभुपाद जी कई बार बोले इस चीज को कि कठोर बोलें, ताकि हमको समझ में आए कि क्या कर रहे हैं हम। हम जब भी इंद्रियों को भोगने जाते हैं, वैसे ही कृष्ण की विस्मृति हो जाती है, ये ध्यान रखिए। जैसे इंद्रियों को भोगने की लालसा आई कि कृष्ण की स्मृति हो गई, और कृष्ण की स्मृति जैसे ही हुई, हमने जितना भी कुछ बनाया है सब कुछ मुरझा जाएगा। कोई भी अच्छी संस्कृति खत्म हो जाती है जैसे ही कृष्ण की स्मृति विस्मृति होती है, और कृष्ण की स्मृति आते ही कितनी भी गरीबी हो कुछ भी हो सब आनंदमय होता है। और वे कुंती महारानी बोलती हैं भागवतम में पहले स्कंद में कि हे भगवान आपके इमे जनपदा श्रुद्धा, कि हे भगवान आपके होने मात्र से, आपके दृष्टिपात के मात्र से ये सारा जो जनपद है, सारे जो गांव शहर हैं, वो सब बहुत ही अच्छी तरीके से पनप रहे हैं, और नदियां बहुत अच्छे से बह रही हैं, सागर जो है वो धन दे रहा है, सोना हीरे मोती सागर से आते हैं, वो सब काहे के कारण, आपकी दृष्टि होने के कारण। अब भगवान तो दृष्टि डाल ही रहे हैं, लेकिन हम दृष्टि को हटा के माया का आवरण अपने ऊपर डाले हुए हैं इंद्रिय भोग करने के लिए। इंद्रिय भोग करने के लिए हमारी चेतना इतनी लालायित होती है कि कैसे रोक लें। जैसे यहां पे पुरंजन पागल हो गया था, स्त्री देखी और पागल हो गया, उसको इतना बोलने लगा, इतना गुणगान करने लगा, और इसको जगदानंद पंडित बोलते हैं पिशाची पाइले मति छन्न है, माया मुग्ध जीवेर है ये भाव उदय। जैसे ही एक लड़के को, आपने कई बार इंस्टेंस देखे होंगे पिक्चरों में तो देखे होंगे, मैंने एक बार कुछ साल पहले यहीं पे देखा, एक लड़का एक लड़की के पीछे पागल हो गया, और पागल हुआ तो मैंने सच में भूत देखा उसके सर पे कैसे चढ़ा होता है, ऐसा भूत चढ़ा कि वो पूरा गोवर्धन परिक्रमा किया, मैं भी कर रहा था, वो गोवर्धन परिक्रमा किया, यहां पे लड़की चढ़ रही थी, वो पीछे 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 पीछे, वो जहां जाती वहीं पे वो, और यहां तक कि उसने उससे शादी करने की भी बात बोली, वो लड़की ने मना कर दिया, तो पागल हो गया, कुछ भी करके मैं ये लड़की को प्राप्त करके रहूंगा। अब इसमें आप बताइए क्या नाम जप करेगा, क्या और कुछ कर सकता है। और ये भूत लगने से पहले ही भगवान की शरण ले, इसलिए भागवतम बोलते हैं अगर भगवान को हम भूले ये भूत लगेगा ही, और इससे होगा क्या, माया मुग्ध जीवेर है ये भाव उदय। जैसे भूत चढ़ता है, आपने भूत चढ़े हुए तो लोग देखेंगे, जगदानंद पंडित बोलते हैं जैसे भूत चढ़ता है और ऐसे करने लगता है वो आदमी एकदम पागल हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार है, किसी को भी मारने को तैयार है, ऐसे ही ये वाली माया का भूत है, लड़के लड़की का चक्कर बहुत खतरनाक है। इसलिए फ्री मिक्सिंग बिटवीन ऑपोजिट सेक्सेस आदमी औरत में, यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु तो, चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखेंगे अपनी पत्नी से भी मजाक नहीं किए। एक बार मैंने अपने एक भक्त के साथ ऐसे चर्चा हो रही थी, मैंने बोला, वो ऐसे कुछ बोल रहे थे कि पति पत्नी आए तो मजाक कर लेंगे, मैंने बोला चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया और हमको उनको पालन करना है, बोले अरे फिर शादी क्यों करेंगे, मैं बोला वही प्रभुपाद बोले शादी क्यों करनी है, क्योंकि इंद्रतृप्ति तो करने का अवसर ही नहीं है, हमको ऐसे बांध के रखा है कि इंद्रतृप्ति करने जाए तो मार पड़ेगी, कुछ भी इंद्रतृप्ति करने जाए तो मार पड़ेगी। हम ऐसे घर में हैं बहुत सुंदर मेरे को एक बार ये आया, एक हम ऐसे घर में हैं जहां पे हमको सब कुछ दिया है, फ्रिज है, चॉकलेट है, ये है वो है, मतलब जो आपको चाहिए इंद्रतृप्ति के लिए सब कुछ है वहां पे। लेकिन आप फ्रिज खोलते हैं, जैसे ही फ्रिज खोलते हैं तो करंट लगता है, अरे बाप रे। फिर अंदर फिर खोल ही लेते हैं किसी तरीके से, फिर कुछ खाने जाते हैं, वहां पे कोई आके हाथ से जोर से झापड़ मारता है, फिर खाते हैं तो खाते ही अंदर कुछ राक्षस बैठे हैं पेट में, वो गड़बड़ करने लगते हैं। ऐसे पूरा बेड पे जाके सोने जाए कि अभी मैं सो लेता हूं, तो एक घंटा दो घंटे के बाद अंदर नीचे से ऐसे कांटे चुभने लगते हैं, कितनी देर सोएगा बेटा, फिर दारू पी के सोऊंगा तो भी कांटे चुभेंगे, फिर और कुछ प्रॉब्लम और कुछ प्रॉब्लम। ऐसे हम एक संसार में जहां पे इंद्रतृप्ति करने गए कि हमको बहुत झापड़ पड़ती है, और इतने जन्मों से हम झापड़ खाते आए, अब तो सुधर जाएं। वो एक बार भक्त बोल रहे थे, प्रभुपाद एक शिष्य हैं, नाम नहीं लूंगा, वो बोले बड़ी अच्छी चीज बोले, लेकिन बोलते हुए थोड़ी लज्जा आती है, फिर भी सुन लीजिएगा, उन्होंने बोला, उनकी बात को रिपीट कर रहा हूं। वो बोले जरा सोचिए, जन्म जन्मांतरों से, कितने जन्म, अनंत कोटि जन्मों से हमने वीर्य बहाया है इतना वीर्य बहाया है, वो बोले इतना बहाया है कि अगर उसका सबका उसको एक साथ लाए तो एक पूरा समुद्र भर जाएगा, अभी भी अक्कल नहीं आई अब तो सुधर जाए। यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडू यने न करियोर एव दुख दुखम। इसने दिया क्या है हमको, ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, कामादिनम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास्तेषाम जाता मैन करुणा न तृपानोपशांति ही उत्सृजयिता नत यदुपते सांप्रताम लब्ध बुद्धिस त्वाम आयात शरणम अभयम माम न्यूं स्वात्मदास्ये। बहुत सुंदर प्रार्थना है भगवान से कि हे भगवान, कामादिनम कति न कतिधा, कि जो काम के मैंने इतने सारी काम वासनाएं अपने मन मस्तिष्क में अपनी चेतना में डाली हुई है कि कामादिनम कति न कतिधा पालिता, और ये सारी काम वासनाओं को मैंने बहुत अच्छे से पाला है, पोसा है, इन वासनाओं को हृदय में मैंने पोसा है। वो बोले चले जाऊं तो भी मैंने पकड़ नहीं नहीं ये खा के रहो, पोसा है बोलते हैं। कामादिनम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा, लेकिन दुर्निदेशा, इन्होंने मेरे को पथ भ्रष्टि किया है, मेरे को आपके पास आने से पथ भ्रष्ट किया है। दुर्निदेशा तेषाम जाता मई न करुणा न तृपा नोप शांति ही, और ना तो जैसे जिह्वा या कोई भी इंद्रिय है उसको मैंने जितना खिलाया वो संतुष्ट नहीं हुई, और मांगा, मैं आखिरी में बोला नहीं चाहिए मुझे तो वो मेरे पीछे पड़ गए, शांति नहीं पाते और ना तृप्त होते कि हाँ ठीक है अभी हम ठीक है तू मुक्त हुआ। प्रभुपाद जी इसको बोलते हुए एक बार बोलते हैं कि एक पति ने पत्नी को पूरे जीवन पाला, अच्छे से गृहस्थ धर्म का पालन किया, जब वो रिटायरमेंट की बात आई और जीबीसी को उसने लेटर लिखा कि मैं लेटर लिखने जा रहा हूं कि, तो जीबीसी ने बोला पत्नी से परमिशन लेके आओ, और पत्नी से जब परमिशन ली पत्नी बोलती नहीं है, इतने जल्दी कैसे छोड़ सकते हो, मरते दम तक नहीं छोड़ना संन्यास कैसे ले लोगे तो ये वहां पर प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि इसलिए भगवान अब मुझे बुद्धि आ गई है, अब मैं समझ गया हूं कि इनको पाल के मेरे को दुखी तो मिला है, अब मैं आपकी शरण ले रहा हूं, आप मुझे इनसे बचाओ, ये डकैत मेरी इंद्रियों के डकैत मेरे पीछे पड़े हुए मेरी कृष्ण चेतना को लूट रहे हैं, आप बचाओ हे भगवान। और ये प्रार्थना सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि जीव को इंद्रिय तृप्ति उसको बद्ध करके रखा है। अब यहां पे अंत करते हुए, क्योंकि 10 मिनट पहले समाप्त करने को बुलाया, तो अंत करते हुए मैं दो चीज बोल के समाप्त करूंगा। एक चीज तो आप लोगों ने, चलिए एक ही चीज बोलूंगा, नहीं समय नहीं है। एक दिन सुबह जप कर रहा था मैं, और जप करते हुए ये ध्यान में आया कि ऐसा कुछ याद आया मुझे, पुरानी बीती बातें यादें, तो अपनी दास्ता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, अगर आपको बुरा लगे तो मतलब रोइएगा नहीं, बड़ी दर्द भरी दास्ता है अपनी, शायद आपको अच्छी भी लगे, और उसमें अगर आपको लगे यही तो मेरी जीवन की भी दास्ता है तो मुझे आके बताइएगा, नहीं है बताना हो तो बता भी दीजिएगा, मिजरी लव्स कंपनी, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपकी भी वही हालत है ऐसे जब कर रहा था तो याद आया कि मेरे, सच्ची घटना है ये, कि जब मैं पैदा हुआ तो बहुत ही बीमार था, और इतना बीमार था कि बस बिस्तर में ही लेटा रहता था, टट्टी पेशाब बिस्तर में ही होता था, और कई बार टट्टी होती भी नहीं थी, और काफी कीड़े क्योंकि उसी बिस्तर पे वो जो प्लास्टिक डालते हैं वो प्लास्टिक में लेटा रहता था, उसी में टट्टी पेशाब, तो कीड़े जो होते थे वो काटते थे मेरी त्वचा को और बहुत दर्द होता था। फिर उसी समय मैंने देखा कि एक औरत मेरे बाजू में, और कई लोग भी घूमते रहते हैं जिसको बाद में पता चला ये तो मेरी माँ है, तो वो औरत मेरे को आती थी, उठाती थी, मेरे को कीड़े काटते थे लेकिन वो फिर दूध पिला देती थी, मेरे को कुछ और होता था वो कुछ और देखती थी। तो उसने देखा बहुत बीमार है भैया, चल भी नहीं पाता, उठता नहीं है, सोता रहता है। तो वो मेरे को डॉक्टर के पास लेके गई, और डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने बोला ये इसको एक बहुत खतरनाक बीमारी हुई है, और ये बीमारी कैसी है, जैसे कैंसर या एड्स में वो शरीर गलता है। तो डॉक्टर ने मेरी माँ को बोला, मैं तो जानता नहीं था कहीं अजनबी लोग सामने खड़े हो गए अचानक, तो उसको बोला कि ये बच्चा ज्यादा दिन जिएगा नहीं, इसका शरीर गल रहा है, और गलते 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 इसको दवाई दारू हमेशा चलती रही है समय समय पे, और गलते गलते एक दिन जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर माँ गई इधर, और भी दूसरे लोग गए, इस डॉक्टर उस डॉक्टर को दिखाया कई उन्हें, फिर जीवन चला, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ठीक है चलता रहा। अभी चलते 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 गलता रहा, अब 40 साल का लग गया, किसी तरीके से बैटिंग करते रहा हूं, और अभी यह हालत है कि काफी 10-11 साल पहले ही इतना गला कि मसूड़े गल गए, तो दाढ़ पूरी गिर गई ऊपर की नीचे की, तो नकली डेंचर लगा लिया। तो उसमें खाने के लिए तो चाहिए, अब कुछ समय में ऐसा डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो मसूड़े हैं वो भी गल जाएंगे, फिर वो भी नहीं खा के फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो बॉइल्ड, और उसको सबको चूरा करके फिर उसको निगलना पड़ेगा। तो जल्दी समय आएगा 2-4-5 सालों में, और बाल भी सारे सफेद हो गए, वो भी बोला ये भी जल्दी झड़ जाएंगे, आंख भी जाती रही है और खत्म हो जाएगी। तो किसी तरीके से दवाई ववाई करके 40 साल तो लग गए, अब पता नहीं और कितना जीवन है जो भी है। लेकिन एक बड़ी समस्या बाद में 16-17 साल पहले इस्कॉन के भक्त मिले, वो बोले ऐसा है भैया, जब बताया अपनी दर्द की दास्तां तो बोले ऐसा है बेटा, तो ये भक्ति करो, जल्दी से जल्दी निकल चलो क्योंकि ये शरीर छूटेगा, उससे पहले तुम निकल चलो। तो उन्होंने शंकराचार्य का एक बड़ा मधुर श्लोक बताया इसी कारण भाई चल रही है, बोले अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम दा जातम तुंडम वृद्धो याति गृहित्वा दंडम तदपि मुन्नम उंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य बोले कि वो भक्त मेरे को बताया कि शंकराचार्य पूरे भारत में घूमे, उन्होंने देखा कई लोग ऐसे जिनके दांत गिर गए, अंगम गलितम, अंग जैसे मेरा गल रहा है अंदर ही अंदर गलते चले जा रहे, तो अंगम गलितम। और ये भी एक बड़ी बात है, मेरी माँ इतने डॉक्टर के पास गई, किसी डॉक्टर ने इसका नाम बताया ही नहीं, ये बीमारी का नाम ही नहीं मालूम आज तक। मैं बड़ा, आप लोगों में से कोई डॉक्टर हो तो बताइएगा। तो फिर वो बोलते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये जो सर है, सर के बाल भी झड़ जाते हैं, ये भी दशन विहीनम जातम तुंडम। तो वो भक्त मेरे को सांत्वना दी कि आप अकेले नहीं हो ऐसे, तो शंकराचार्य ने कई लोगों को देखा कि दशन विहीनम उनके दांत भी गिर जाते हैं, और वृद्धो याति बुढ़ापा आ जाता है, और हाथ में डंडा आ जाता है, लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तब भी ये जो काम वासना की आशा है, मैं अभी काम ये भोग करके मैं सुखी होऊंगा, भोग करके सुखी होऊंगा, ये आशा पिंडम छूटता ही नहीं, इसका पिंड जाल। तो ये हालत है मेरी। तो आप लोगों से प्रार्थना यही रहेगी अंतिम करते हुए कि मेरे जैसे जो कभी पता नहीं कि अभी गया कि कब गया मालूम नहीं, तो होरोस्कोप भी ठीक ठीक बताता नहीं कब मरेगा, तो जब भी मरूंगा उससे पहले ये जो आशा पिंडम है ये छूट जाए। क्योंकि भगवान 11वें स्कंद में जब पिंगला की कहानी बताते हैं तो उसके अंत में भगवान बोलते हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव, पिंगला का पूरा स्टोरी बता के कि हे उद्धव, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि जब तक पिंगला ने या किसी भी जीव ने आशा बना के रखी कि भौतिक संसर्ग में भोग करके मैं सुखी होऊंगा, यही तो परम दुख का कारण है। क्योंकि जैसे ही हम कोई आशा रखते हैं, ध्यान रखिए, भगवान बड़े खुश होते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं ये करके मैं सुखी हो जाऊंगा, भगवान आप हंसते हैं, अरे बेटा अभी मैं फ्रस्ट्रेट करूंगा तेरे को, ये आशा तेरी तोड़ दूंगा। और जैसे नैराश हो जाते हैं, हम पूरी आशा छोड़ देते हैं, वैसे ही सब कुछ सुख। तो तो बोलते ना कि एक भिखारी के लिए कुछ भी मिल जाए तो खुश है, वैसे जिसको कोई आशा नहीं है वो बोलता है कि मेरे यही हमको ट्रेनिंग देता है भागवतम, मेरे पूर्ववर्ती कर्मों के कारण तो मेरे को डंडे पड़ने चाहिए, कोड़े पड़ने चाहिए। अगर ऐसी भावना सही में सिर्फ बोलने के लिए नहीं रही लेकिन अंदर घुस गई तो सब जगत सुखालय लगेगा, क्योंकि अरे इतना अच्छा प्रसाद मिल गया। अभी हमको क्या लगता है, प्रसाद मिला दो सब्जी बनाई लेकिन ये सब्जी में ये कम है, वो सब्जी में वो कम है, 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 है। हमेशा है, 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 है। पूरा जीवन हमारा असंतुष्टि रहता है, अरे कुर्ता मिला कुर्ता यहां से फटा हुआ है, क्या सप्लाई में ये नहीं मिलता, सप्लाई में वो नहीं मिलता, हमेशा गाली देने की आदत, इसलिए असंतुष्टि। अमीर से अमीर आदमी कुछ ना कुछ चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन जैसे ही निराश हो गए वैसे ही परमम सुखम, और ऐसे में क्या हुआ, पिंगला सुख से सो गई। तो अगर हमको रात को नींद नहीं आती ठीक से तो वो है हमारी आशा, वो सब आप लोगों की फिर मेरे जैसी हालत है, जो अंदर तो गल रहा है शरीर गल रहा है और लेकिन अभी भी आशा पिंडम, अभी भी भोग भोगूंगा, अभी भी भोग भोगूंगा, अभी भी भोग भोगूंगा, अरे गधे की बच्चे क्या भोगे, सुधर अब तो सुधर, इतने जन्मों से भोग किया लेकिन थकाने और यादें हैं अभी भी लेकिन थकाने, और भागवतम पढ़ के इतना लिया, इतना लिया लेकिन थकाने। तो इसलिए ये जो कहानी है अगर आप लोगों को लगा हो गया हो गया, अगर आप लोगों को लगा हो कि इससे आप लोगों का सहानुभूति है तो थोड़ा भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना कीजिएगा कि प्राण गोविंदास को इस भौतिक संसर्ग से, इस शरीर के जो खत्म हो ही रहा है गल रहा है तो जल्दी से छोड़ दे यार मुश्किल है, शीशे के सामने खड़ा होता हूं बोलता हूं अबे मर रहा है, अबे मर रहा है, चैतन्य ये बताए ना दुष्ट मन तुम्हें किसेरा वैष्णव, सामने खड़ा होता हूं बोलता गधे के बच्चे सुअर उल्लू, कई बार अपने आप से बात करता हूं बोलता छोड़ यार, नाम जप कर भजन कर, इसमें क्या लगा हुआ है, शरीर जब गलेगा गिरेगा तो कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, लेकिन फिर वो खत्म किया भागवतम बंद किया कि वापस से, अरे क्या बात कर रहे हो, भक्ति तो इसीलिए कर रहा हूं कि ये लाल कपड़ा किसने डाला है, कि कुछ लोग दंडवत वगैरह करेंगे सलाम ठोकेंगे, 10 लोग होंगे प्लेट व्लेट साफ करेंगे अवे गधे के बच्चे, फिर पढ़ता हूं फिर लगता है अरे नहीं, फिर जैसे फिर से ये सब माया है, इससे मैं अंत करूंगा, ये लाल कपड़ा भी माया है, सफेद कपड़ा माया है, लाल कपड़ा माया है, काला कपड़ा माया है, सब माया है, शरीर ही माया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं और भगवद गीता का शुरुआत होता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और ये सब शरीर है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेनम निर्मलम, तभी आत्म शांति मिलेगी, जब तक ये लाल कपड़ा सफेद कपड़ा इसमें लगे रहेंगे तब तक नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सॉरी थोड़ा टाइम ऊपर ही जा रहा हूं, सॉरी ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए बोलना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि अरे लाल कपड़ा की मेरे को परवाह ही नहीं, अभी तो जाके माता जी कैसी है माता जी, ये जो फ्रिवोलस एक्टिविटी है लड़का लड़की में, औरत आदमी में, ये अच्छा नहीं है। कई बार होता है भक्त लोग ब्रह्मचारी या गृहस्थ से चैतन्य महाप्रभु अपनी पत्नी से भी जोक नहीं किए, हंसखेल ये गंभीर है, खासतौर पर औरत आदमी के ये जो शरीर है ना बड़े गंभीर है, चैतन्य भागवत में बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं है, मायावी जो मायावी डाकू है हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर, नहीं वो मेड फॉर ईच अदर है ही नहीं, वो दोनों एंटी हैं। और कैसा है, प्रभुपाद बोलते हैं का जो शरीर दिया है वो है आध्यात्मिक प्राप्ति करने को, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति करने के लिए, औरत का शरीर बुरा मत मानिएगा, औरत आती है वो आदमी ऐसे जा रहा है औरत आती है बीच में उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, वो शरीर इसलिए। तो दो जीव एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं और हम सोचते हैं अरे वाह हम तो बहुत अच्छे हैं नहीं, इसलिए आपस में बहुत गंभीर ये जो संबंध है बहुत गंभीर है, खासतौर पे औरत आदमी के बीच में ये जो संबंध है बहुत गंभीर है, और खासतौर पर वृंदावन में एक स्टैंडर्ड सेट करें ताकि लोग खासतौर नए लोग जो आते हैं ऐसे नग्न तरीके से आते हैं, इतना ऐसे ही आते हैं, उनको कम से कम माताओं की से रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ा ड्रेसिंग तो सिखाएं कि ड्रेस कैसे करना चाहिए, मतलब पुरानी माता जी उसको मालूम है कि ड्रेस कैसे करना चाहिए, ड्रेस कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा, ड्रेसिंग ही ठीक नहीं है, इधर से दिख रहा है इधर से दिख रहा है इधर से दिख रहा है, क्यों तमाशा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मनुष्य जीवन फिर से, फिर वो उससे क्या होएगा, कुत्ता बिल्ली डूंग 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 डूंग, फिर वही। इसके लिए थोड़ा सावधानी से अपने चरित्र को अच्छा बनाएं। इसका यह मतलब नहीं है कि औरतों से नफरत करते हैं, भेद करते हैं, ये नहीं, सावधानी दोनों के लिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के अलावा सुख किसी चीज में है नहीं। तो खेल में जीवन क्यों बिताएं, अलग अलग खेलों में। तो यहां पे समाप्त करूंगा, क्षमा कीजिए थोड़ा ज्यादा समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय।